तस्मै श्रीगुरवे नमः वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महापतनाय कृष्णप्रेमप्रदाय ते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषे गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय सर्वभक्ताय अंगश्यामलिं छटाभिरभितो मन्दे कृतेन्दीवरं जटं जागरूरु वृन्दारण्य निवासिनं नीलसद्दामाभिरामोदरं राधास्कन्ध निवेशितो जलं त्वैवास्मि त्वैवास्मि न जिमामि त्वया विना इति विद्यै राधेयं वैराग्यजुगभक्तिरसम् अपायन्मानुभेक्षिनन्दम् कृपाम्बुदिरिज परदुःखदुःखे सनातनस्थम् गुरु एवं गौरांग की अहत की कृपा से निर्विघ्न हम लोगों का ब्रजमंडल परिक्रमा आज 15वां दिन मैंने आधा महीना व्यतीत हुआ। वैसे तो छोटी मोटी कुछ दिक्कतें आती हैं किंतु विशेष रूप में कोई विशेष विपत्ति आपत्ति नहीं है। चल रहा है प्रोग्राम। हमने अभी बृहद भगवतामृत का रहस्यपूर्ण विचार आप लोगों को गोपियों की महत्ता वो भी कृष्ण के स्वयं मुख से हमने आप लोगों को सुनाया। अब मैं भजन का रहस्य इस विषय पर मैं कुछ बोलूंगा। भजन का रहस्य क्या है इसके संबंध में श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी का एक छोटा सा ग्रंथ है भजन रहस्य। श्री प्रभुपाद श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती इसका इसकी भूमिका में लिखते हैं। दिन रात के काल को 8 भागों में विभक्त करने में इनमें से प्रत्येक खंड काल याम कहते हैं। दिन रात 24 घंटे का जिसमें 8 भाग कर दिया जाए तो उस खंड काल को याम एक याम है। 24 मिनट का एक दंड होता है और एक एक इनमें से यो याम है वो सभी बराबर होंगे ऐसा कोई माने नहीं। दोपहर का और आधी रात का निशा का ये कुछ अधिक अधिक समय के होते हैं बाकी कुछ कम समय के होते हैं किंतु कुल मिला करके 8 याम है। रात के 3 याम और दीन के तीन का उषा और संध्या का और जो कर दो तीन तीन छ और दो उषा और संध्या समझ में आया बतलाइए तो मैंने क्या कहा कैसे हुआ दिन में कितने हैं ग्रहण एकदम ग्रहण कर दिए तो बोलो दिन एवं रात तीन तीन जाम और बाकी बचलो भूत जाम एक तो उषा काल सकाल बेला और रात्रि संध्या इटा ये दिनों पड़े ना रात को ते मिले कुल हो लो आठ जाम अर्थात बराबर है गलो कितना घंटा चौबीस घंटा चौबीस घंटा मध्य आठ घंटा हिसाब नाम बनाना लीला रूप मध्यरात्रि और मध्य दिवस एटा प्राय तीन तीन घंटा थे साढ़े तीन घंटा प्राय तीन घंटा हाँ उन्हें चार घंटा पर एक एक बाकी के विभाग कर ढाई घंटा अधिकांश ढाई घंटा सब समय सर्वभाव से एकांतिक निष्ठा के साथ कृष्ण भजन केवल शुद्ध वैष्णवों के लिए संभव है अनर्थ निवृत्ति जिनकी हो गई है ऐसे जो वैष्णव है उनके द्वारा संभव जो अभी कनिष्ठ अधिकारी है जो कि वैष्णव सम्मान नहीं जानते सब समय तामसिक भाव है ये भजन करेंगे दो एक लेख लिखने से नहीं होता बल्कि ऐसे लोगों के लिए लेख लिखना भी मना है स्थूल और सूक्ष्म ये प्रभुपाद का विचार है स्थूल सूक्ष्म अंगता और ममता रहने पर स्थूल और सूक्ष्म स्थूल सूक्ष्म क्या है स्थूल स्थूल ममता शरीर में और सूक्ष्म अनुमता के मैं मन ही हूं ये दोनों आत्मा के लिए नहीं सूक्ष्म यदि रहे तो सर्वकाली असंभव है भजन का जैसे रघुनाथ दास को स्वामी श्री भक्ति विनोद ठाकुर हमारे आचार्य लोग पहले वाले कर गए हैं रूप रघुनाथ अष्टकाली भजन उन लोगों के लिए सिखाए अथवा उनके लाइन में रहने वाले हरि संबंधी वस्तुओं में प्राकृत और माइक भाव का आरोप करने पर जीवों की बदभाव से मुक्ति नहीं होती सब कुछ इस जगत में हरि संबंधी वस्तु ऐसी कोई चीज नहीं है जो हरि संबंधी है ऐसे देखने वाले उत्तम वैष्णव है और ऐसा समझने वाले मध्यम अधिकारी अनुभूति वाले उत्तम भक्त वैष्णव तो हरि संबंधी वस्तु ये करताल क्या है क्योंकि इसे भगवान का कीर्तन इस संसार में जितने हैं सब कुछ एक केला का पेड़ लगाया गया हरि संबंधी ये नाट्य मंदिर हरि संबंधी क्योंकि भगवान का गुण कीर्तन तो असंबंधित वस्तु में प्राकृत या माइक भाव शुद्ध स्वरूप प्राप्त भजन पर वैष्णव जन निरंतर कृष्ण सेवा में तत्पर शुद्ध अपना स्वरूप जो प्राप्त कर गोलोक वृंदावन वे लोग राधा कृष्ण की सेवा करेंगे वो रागात्मक जन और हम लोग जो ऐसा भजन करने की चेष्टा करेंगे वे रूपानुग या रागानुग वैष्णव चैतन्य गौ सुंदर द्वारा रचित शिक्षाष्ट के आश्लोक अष्ट जाम के अनुकूल भाव, एक एक श्लोक एक एक भाव। पहला वाला है ये मुखबंध मंगलाचरण और बाकी जो सात श्लोक है कि आठ श्लोक सात, और इसको भी भीड़ ले लो, ये आठ जाम के है। रूप गोस्वामी द्वारा रचित एकादश श्लोक उपदेशांग मनोवेग क्रोध वेग प्रत्याहार प्रयास उत्साह, ये सब जितने भी श्लोक है। महाजनों की अष्टकारी भजन भी भजन लालसा मई की कविताएं मन में निरंतर का विधान भजन में प्रवृत्त कर जड़िय देश काल पात्र से सर्वथा मुक्त होकर गुरुओं को निरंतर भजन का रहस्य। रहस्य क्या है भजन रहस्य? गुरु उपदेश श्रद्धालु लोगों को जो जानना उचित है गुरुदेव का भजन के विषय में उपदेश विषय ही ये रहस्य। रूप गोस्वामी ने भक्त स्वामी सिंधु उज्जवल इनमें और ग्रंथों में इसका वर्णन Have you understood?
For 15 days, now we're in the midpoint of our parikrama. And even though we've had one or two small disturbances, by the mercy of Bhagavan and Guru Parampara, no big disturbances have come. So we're lucky for the last 15 days, we've had the chance to hear the glories of the gopis directly from the mouth of Krishna as described by Sri Sanatana Goswami in Sri Vishnu Bhagavad Gita. So now we have a good portion of here, Srila Bhaktivinoda Thakur's Srivajana Rahasya. So even though it's a very small book, Srila Bhakti Siddhanta Sarasvati has written that in this is all Bhajana Rahasya, meaning the secret truth of how to do bhajan. So we should understand first that one day is divided into 24 hours. So in this 24 hours, according to the corresponding pastimes of Bhagavan, it is divided into 8 different sections. That is called a nyam. So in each one of these, in each day, there are 3 nyams, or 3 sections in the daytime, and 3 sections at the night time. And there is, in the sandhya, which means that it's either day or night, there are 8 sandhyas. One in Mangalati and one in dusk. One at dawn, one at dusk. So, two are a little bit longer. It's not that all 8 sections are of equal time period. The one in Madhyam, the nyam, which corresponds to lunchtime, and the nyam, which corresponds to midnight pastime, these are a little bit longer, maybe up to 4.5 hours each. So, here, in this book, Srivajana Rahasya, Srila Bhaktivinoda Thakura has described how the Akantic Vaishnavas, the single-pointed Vaishnavas, perform their Sula Bhakti performed their bhajan. This is not possible. This type of bhajan is not possible for a Kanishka Adhikari who has not yet crossed the stage of Anasana Vritti. He has so much tamasic bhav. He is completely engrossed in the bhajan. He is somewhat engrossed in the mode of ignorance. He is completely related to the gross and subtle bodies, so he cannot perform this Ashtikala Vilasanam, which means spontaneous remembrance of the pastimes of Krishna performed throughout eight different periods of the day. So for the Kanishka Adhikari, he thinks of himself in the gross and subtle conceptions. In the gross conception, this little surreal, he thinks, I am this body made of five elements. And he is also engrossed in the subtle false conception of himself by thinking I am his mind, his intellect, or his false ego. So, Astik Goswami, headed by Sri Rupa Goswami, and those who are doing bhajan, following in the footsteps of the Goswamis, especially our Guru Parampara, consisting of Srila Bhaktivinoda Thakur, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, and our Guru Maharaj, only they are qualified to perform this Astik Kalyanika bhajan. The Kanishka Adhikari, the Uttama Adhikari, he sees how everything is related to Krishna, Harisam Bhandu Vasana. Therefore, he thinks everything is related to Krishna, therefore everything is transcendental. For example, the cartels, is that material or spiritual? This Nachmandir, or the banana tree that you put out in front of Guru Maharaj's room. This is not to be understood to be material or material. This is
what do you mean? Can you tell what is not Hari Sambandhi Vastu?
Everything is Hari Sambandhi Vastu. O Vaishnava. O Uttam Vaishnava, everything is Hari Sambandhi
Vastu. But any Vaishnava Paradi?
He can understand. This is only for Uttam Adhikari. He can understand all these things. For Madhyamari, he can actually realize all these things. But Madhyamari, he understands but doesn't have full realization. But he understands in theory. Kanishka Adhikari doesn't understand anything about this topic. Those things which are engaged in the service of Hari also take on the same qualities of Hari. Therefore, they are to be understood to be transcendental. But Kanishka Adhikari cannot understand any of this. And he superimposes his own material ideas onto what is actually transcendental seva. So, we should understand what is Ragatmik Jan. Ragatmik Jan means the eternal associates of Goloka Vrindavan, headed by the Vrijavasi. They are called Ragatmik. Rag has become, their atma is made of Rag. And those who follow in the footsteps in this world performing bhajan, they are called Rupanuga or Raganuga. So those who perform pure bhajan, being situated in their sarup, under the anugatha of pure Vaishnava, they can be called Raganuga or Rupanuga. So Srila Chaitanya Mahaprabhu in his Shikshastik has given eight verses. In this he has given all, Bhajan Mahasya. The first verse, Chaitanya Dapanam Bhajanam Mahagavati Vapanam, this is called Mangalacharam, or auspicious invocation. And the rest of the seven verses, this is described in different pastimes which take place in the eight different periods of the day. So all these instructions that Srila Bhakti, that Srila Rupa Goswami has given in his two books, Sri Bhakti Rasamrita Sindhu and Sri Ujjvalanamani, which is described how the perfected Mahajans perform this Astakali Lila Smaran, or spontaneous remembrance of the pastimes of Krishna. This is called Bhajan Rahasya, and Srila Bhaktivinoda Thakura is describing these things in his book, Hare Krishna.
Srila Bhaktivinoda Thakura has told that, is Bhajan Rahasya mein Krishna Leela Sambandhi 8 yam batlaye. निशांत लीला उषा लीला प्रातः लीला, पूर्वाह्न लीला, मध्याह्न लीला, सायाह्न लीला, प्रदोष लीला और एक छुट्टी अपराह्न और प्रदोष और फिर नैष, ये आठ लीला। भजन का रहस्य क्या? एक एक याम के लिए ये बतलाया। जैसे कृष्ण की निशांत लीला, राधा कृष्ण शयन से उठे, सुख सारी ने उनको उठाया और फिर दोनों राधा कृष्ण की सखियों ने आरती उतारी और अर्धि वे दोनों अपने भवन में लौटे। संक्षेप में निशांत प्रातः लीला, घर में पहुंच करके यशोदा मैया कृष्ण की आरती उतार गई और कृष्ण मानो अभी सोए हुए थे। पूर्णिमासी जी रोहिणी मैया मुखरा और सब ब्रजवासी ये उनकी आरती उतार और फिर कृष्ण गोदोहन के लिए चले जाते और मल्ल क्रीड़ा करते हैं, ये प्रातः। अपराह्न लीला, पूर्वाह्न, पूर्वाह्न लीला में राधिका जी अपने जावट के घर से आती है, यशोदा मैया बुलाती है और सब सखियां उनको ले आती हैं और वो रसोई में लगती हैं और कृष्ण उनसे उन पर मिलन होता है कृष्ण का और फिर कृष्ण कुछ भोजन करते हैं और शयन करते हैं राधिका से और कृष्ण का मिलन। यहाँ कुछ निकल करके जाते हैं पन के लिए गोचारण के लिए, नंद यशोदा मैया भी वहां पर। इसके बाद में मध्यान्ह लीला, मध्यान्ह लीला में नंद बाबा यशोदा मैया लौट आते हैं घर, राधिका जी बड़े दुख से घर में लौटते और कृष्ण गोचारण करते हुए सखाओं के साथ में विविध क्रीड़ा करते हैं और क्रीड़ा करते 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 राधिका जी को अन्वेषण करने के लिए अपने सखाओं को भेजते हैं और राधा कुंड के तट पर उन दोनों का मिलन होता है। सूर्य कांड कुंड में मिलन होता है, लुका चोरी बंसी चोरी और जमुनापुरी या सरोवरों में नौका विलास इत्यादि सारी लीलाएं जो रासलीला में कही गई हैं उनसे भी होलिका इत्यादि सब लीलाएं, इसलिए ये बड़ा है दिन वाला, ये सर्वश्रेष्ठ लीला माना गया गोपियों को सेवा करने का अवसर। इसके बाद में अपराह्न लीला, गायों को चरा करके ही री री तीरी तीरी इत्यादि करके उनको जल पान करके खिला करके लौटते अपराह्न लीला और गोपियां दोनों तरफ से उनको मिलती है नैनों की आरती। कृष्ण गोचारण से लौट करके जो सुंदर मैया स्नान इत्यादि कराते यहाँ तक अपराह्न। इसके बाद में प्रदोष आया, प्रदोष में कृष्ण गोदोहन करके लौटते हैं, यशोदा मैया नंद बाबा सब सखाओं के और सब गोपों के साथ में भोजन कर रहे हैं भोजन के लिए जाए और इसके बाद में कृष्ण तांबूल इत्यादि लेकर शयन करने जाते हैं। उस समय गोपियां भी किसी न किसी बहाने से मिलती हैं, यहाँ तक हुआ अपराह्न। और इसके बाद की जो लीला है अंत तक निशांत तक वो सब इन समस्त लीलाओं में मध्यान्ह लीला और नैष लीला सर्वश्रेष्ठ, किंतु इन दोनों में भी श्रेष्ठ प्रभुपाद ने या हमारे गुरुवर्ग ने तो मध्यान्हिक लीला को सर्वश्रेष्ठ कौन नहीं समझ में आए पूछना।
Guardian again. One day is divided into eight sections or eight yamas. So these are as follows. Nishant. Nishant Yubanage. Just at Brahma Mahata, in very brief form. Just at Brahma Mahata, Siva Krishna are together. At that time they have to wake up. So Yoga Maya inspires all the birds, peacocks, to begin their calling. And Radha Krishna awaken and return to their separate respective houses. Srimati Radhika returns to Yava, and Sri Krishna returns to Nandarama. This is called Nishant Lila. After that is called Pradyan Lila. That happens, Krishna returns to Nandagao and goes into his own bed and sleeps there. That's when Yogamaya comes with Rahini, Yasoda, and many others, and they perform Aarti of Krishna and awaken him. This is Pradyan Lila. Then Purvani Lila. Srimati Radhika also has returned to Yava, to the house of Brahma Lord. And there she is awakened. And there, on the order of her mother-in-law, she would go with her sakis to Nandagaon. There she engages in cooking for Krishna. So Krishna there performs his bhojan lila. He also milks the cows at that time and takes prasad. And after prasad and everything, he goes with the cows and all his sakis, cow grazing. And Nanda and Sunanda, they sort of follow behind him. Then last is Madhyam Lila. Madhyam is the very long pastime in the middle of the day.
Madhyam Lila?
Madhyam.
What Madhyam?
Madhyam Lila.
Not Madhyam Lila. Madhyam Kanishth and Uttam No Lila. Ramchandra tried to write and explain later on. Madhyam.
Madhyam.
Madhyam means, what is the meaning of Madhyam? What is the meaning of Madhyanna Lila?
Madhyanna Lila means midday pastimes.
Yes. From who? From what time to what time?
Just 4.5 hours exact time. Maybe like 10:30 to 3 o'clock.
From 11 to how much? Like this. Go on.
10:48 to 3:36. That time, that is a very long pastime that goes for 4.5 hours. So Nanda and Yasoda return from cow grazing. They can't follow Krishna all the way to the forest. They return. So Srimati Radhika also at that time, she is very much in separation. She has to return from Nandagaon, back to Yava. And Krishna goes cow grazing with many sakis. Srimati Radhika, using some excuse, some trickery, somehow she escapes from her mother-in-law's house at Yava, and she goes to Srutakund or Radhakund. That time she engages many different pastimes directly with Krishna, including gambling, drinking honey wine, stealing Krishna's food, and many different pastimes. Sri Siddhanta Saraswati Thakur saying, of all the pastimes, this is the topmost pastime. This is Madhyama Lila. Then after that, because that time everyone gets so much chance for seva at that time. Then Aparyam. That time Krishna calls Tire Tire Nini Nini Churu Churu. No cows, drink up and return home. That time Krishna performs the milking of the cows and Mother Yasoda comes.
But do you understand by Aparanna?
After Madhyanna
Lila.
Krishna returning home to Nandagaon. And Sakhi is returning home to Yava. This is Madhyanna Lila.
Like about 3:30 to 6. 2:30.
3:30?
Yes.
That time Krishna returns home.
Last time before evening.
That time after milking money is sort of very personally. Then after that from 6, last time, for those Lila That is Krishna's Bhojamila. Many, many types of prasad, Sanskrit, Nanda, and different sakas and Yasoda. After prasad, they give him Kalabo, which is like a digestive. After that, Krishna goes for rest. And last is night, pastime, nighttime pastimes. That is also very long, 4.5 hours. So the best pastimes are performed in night, which means midnight pastimes, and Madhyana Lila, midday pastimes. Because they are the longest and so much interesting pastimes. But amongst these two, the Madhyana, the midday pastimes, are the topmost, according to the conception, Srimad Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur.
Similarly, our bhajan is also divided into 8 yam. First yam, there nishan, here, oh, shraddha bhajan. What is shraddha? A sadhak. Hearing this, Krishna Tattva, three pastimes of Krishna. He has some faith, strong faith. उसको पूर्ण विश्वास है कृष्ण की भक्ति करने से हमारा जीवन सफल हो गया, हमारे जीवन के समस्त कार्य सिद्ध हो गए. ऐसे विश्वास को श्रद्धा. इस श्रद्धा के साथ में हरि कथा श्रवण करेगा, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सत्यम आत्मसेवनम. ये सब चीजें करेगा तो ये निशांत भजन है श्रद्धा. दूसरा प्रार्थना भजन, दूसरा है श्रद्धा के बाद में अनर्थ निवृत्ति. पहले अनर्थ वृत्ति करो और तब नित्य वस्तु सिद्धि, भाव सिद्धि और वस्तु सिद्धि, स्वरूप सिद्धि और वस्तु सिद्धि पीछे. डोंट ट्राई टू बी वस्तु सिद्धि एंड स्वरूप सिद्धि. Degree by degree, gradually all stages may come. But I start from beginning. पहले से ही आरंभ करो. दूसरा है अनर्थ. अनर्थ को आगे बतलाएंगे. चार प्रकार के स्वरूप ब्रह्म, असत कृष्ण, हृदय दौर्बल्य और अपमान. ये भी चार चार प्रकार, 16 प्रकार के अनर्थ. इसके अनर्थ अतिरिक्त भी और अनर्थ है जिसका वर्णन किए हैं, हम लोग वर्णन किए हैं संक्षेप में. हम अपने स्वरूप को भूल गए. नाना प्रकार की संसारिक कामनाएं मालूम होती है कि आत्मा और हृदय दुर्बल हो जाता है, विचार करने की शक्ति नहीं रहती. ये हम क्या अपराध करते, सारा जीवन जो शिक्षा देते भजन की शिक्षा और उसके विपरीत ही अपराध उनका हो, उनके इच्छा के विपरीत काम होता है, यही अब भजन से फिर ये अनर्थ जाना चाहिए. तीसरा है श्रद्धा निष्ठा, बुद्धि का स्थिर हो जाना, किंतु जान बूझ करके बुद्धि को स्थिर करना. इसके बाद में रुचि है, रुचि भी 2 प्रकार की है. इसके बाद में आसक्ति, आसक्ति भी 2 प्रकार. एक भजनीय और भजन और भजनीय दोनों. और इसके बाद में अप्राकृत शुद्ध सत्य रूपी भाव, यही तक भजन प्रणाली है. इसके बाद में भजन प्रणाली नहीं. इसलिए यहाँ तक जो कहा अनर्थ निवृत्ति और इसके बाद में निष्ठा कितना हुआ, श्रद्धा भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति निष्ठा रुचि आसक्ति बस यही तक भज साधन है। इसके बाद में भगवान की सेवा मिलेगी, इसके बाद में वस्तु सिद्धि। इसको अच्छी तरह से समझ करके जो लोग भजन करेगा वो तो जल्दी से पहुंच जाए, और नहीं तो अनर्थ निवृत्ति की चेष्टा नहीं करके ऊपर में वस्तु से हम तो गोपी दास है नहीं, लाख चेष्टा करके मत जाए। इसलिए अधिक बातें मत करो, गोपी भजन की बात अधिक मत करो, बस लोभ हृदय में हो, अलोभ होने के बाद में अनर्थ निवृत्ति की चेष्टा। गोपी भाव करने से हो जाएगा, गोपियों में जैसे ममता है कृष्ण की और उनके लिए प्राण छोड़ने लगती छटपट छटपट कर मछली की भांति हो जाएगा तुम लोगों का, मन में कल्पना करने से ही हो जाएगा, मन में कल्पना से नहीं होगा। इसलिए जितने परिमाण में अनर्थ दूर होगा स्वरूप सिद्धि होगी, अपने आप ये सब भजन होते चले जाए, ये भजन रहस्य का गुरु ठाकुर जी जीवो पर अपार दया है रामचंद्र। जैन जैन नहीं जैन नहीं, अज्ञान तिरंधस्य ज्ञानं जनश्लाघ्य चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे।
Always
entangled in sense gratification is ajnana. That has happened.
That is darkness. That period has gone. Now we have entered into a period where some light has come. That is called Shraddha.
What is light? Sadhu Sangha.
This light is Sadhu Sangha. Shraddha. We are in.
Oh. Shraddha is like light. Light is coming. By Sadhu Sangha, this light will come. You will know everything. No Sadhu Sangha, no sleeping. That is sickness.
This is a real thought what Gurudev has said. That night means, night of all living entity means that they could not have any Sadhu Sangha so far. That means we are sleeping. The day we have a Sadhu Sangha, association of a devotee, then dawn comes. That is light is coming. From dawn, from this Shraddha we enter in Shraddha. Shraddha means morning. Light has come, that the sun has also shown its form. At this time, anarth will go, unwanted desire will go. This is called anarth period of anarth nivritti. Very essential part. In cultivation of bhakti, this process, that is removal of unwanted desires, anatta nivritti is very essential. There are four types of anatta. Before dispelling of this unwanted desire, one cannot reach to the stage of vastu siddhi. One cannot reach even the stage of bhav, what we call of vastu siddhi. So, but these are four types of unwanted desire: anand, savrupa brahm, hridaya rupa dorvalle, asat krishna, and aparad. We are not sure about our constitutional position. This savrupa brahm leads to Hriday Dorbalya. What is Hriday Dorbalya? Hriday Dorbalya is weakness of our heart. We are not sure about ourselves, then we are not sure of what to do. Forcefully we are doing something which should not be done, which is against our bhajan process. This leads to Asat Krishna. So many.
From
when we don't have the realization of our constitutional position, that leads Asat Krishna. Asat Krishna means having so many material desires. And this leads Hriday Dorbalya, that is weakness of our heart. And this leads to aparad, what is called committing offenses. So, this way we have to check our anartha, unwanted desire. When we surpass this stage, when we overcome this stage, then we come to the stage of nistha. What is nistha? So many unwanted desires we have removed. And now, by our mind, by our thinking process, forcefully, we are performing all process of bhakti. Forcefully, dedicatedly. It is not spontaneous. By our mind we do it first. And then we come to the stage of ruchi. Ruchi means some taste comes. Then the process becomes a little bit automatic. Because taste is coming. It's also of two kinds. Gurudev has not narrated here. Then asakti comes. He is just giving the glimpses. Asakti means when a ruchi becomes more and more condensed and stronger, then it comes asakti, deep attachment. This is also of two kinds. First asakti is for the name, naam. And this asakti also comes to the nami, name, to the
bhajan,
person whom name belongs to.
Bhajan and bhajani. First, it will come
for naam.
Bhajan. And then asakti towards bhajan. Samadam kirtanam vishu samadam padaseva archan bandhan sadhu sanganam kirtan bhagavat pravana puravas. That. And bhajani, after that it will be transferred to Krishna and Radhika gopis.
So asakti has two levels, two aspects. When it comes to our bhajan process, ninefold process, shravan, kirtan, smaran, etc. And then it further transfers, and Sri Gurudev is explaining, towards bhajaniya, to whom we are pointing out, pointing to perform our bhajan, that is Radha and Krishna and their associate. And when this asakti goes away, and it becomes more and more stronger, condensed, then it comes Shuddh Sattva, it comes in our heart. It
flows Aladhani Shakti.
Aladhani Shakti. It descends in our heart, from the heart of the associate of Krishna. Then bhav comes. Up to this stage, bhajan was being performed and onward. That is, from this stage and onward, bhajan is sadhan is not performed. Sadhan is up to this stage only. Further, real bhajan starts. So our process of bhajan, which has been narrated by Sri Rupa Goswami, Shraddha, Anat Nirvati, Shraddha, Sadhusam, Anat Nirvati, Bhajan Priya, Anat Nivritti, Nishtha, Ruchi, Asakti, and then Bhav. Up to this stage, sadhana remains. And from this stage onward, there is no sadhana. Now it is a bhajan, real bhajan. So far, we reach this stage, we should not.
Why bhajan? Why it is called bhajan, not sadhana? What is the difference between bhajan?
You said that direct seva of Radha Krishna is called bhajan. And sadhan is process for it.
Nahin, prandali mane sadhan ke ang hai. Sadhan vahi par samapt ho gaya. Ab sadhan nahi. Ab to nitya siddho ke saath mein guru vrindavan mein jo kuch hai. Thank you. Thank you. As I declared yesterday, that our Panda is like shadow whom